अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नन्ने गौरदिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इतराजये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तलभक्ताय अंगशामलिं छटाभिरहितो मंदीकृतेन्दीवर जर्दञ्जाकुटरोचिसंविदधतनुपट्टम्बरस्य श्रिय बृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदर राधास्कन्दनिवेशितजलभुजं ध्यायेताम् या विदेशों में जो भारतवासी रहते हैं उनका दीपावली का पर्व है। लक्ष्मी देवी का आगमन हो इसलिए दीपावली जलाते हैं। रामचंद्र जब लंका विजय करके लौटे तो दीपमाला के द्वारा उनका स्वागत किया गया। कृष्ण जब पांडवों का यज्ञ करा करके जब लौटे तो दीपमाला द्वारा द्वारका को सजाया गया था उनके। किंतु मैं समझता हूँ दीप मने प्रकाश, मा तमसो ज्योतिर्गमन, अंधकार के तरफ में मत जाओ। माने क्या? संसार चक्र में मत फंसो। अंधकार है, विषयों में आसक्ति, घर बार स्त्री पुत्र परिवार में धन में आसक्ति, ये अंधकार है। इससे जीवन, मनुष्य जीवन जो भगवान ने कृपा करके दिया है वो बेकार हो जाता है। इसलिए भक्ति के द्वारा प्रकाश होता है और उस भक्ति के प्रकाश में हम अपने को और भगवान श्री कृष्ण को सबको हम देख सकते। इसलिए यथार्थी भक्ति ही प्रकाश देने वाली है। उनके प्रकाश में हम भगवान को भी देख सकते हैं, उनके परिकरों को देख सकते हैं, अपना स्वरूप देख सकते हैं। ये दीपावली का तात्पर्य है। और ट्रांसलेट
So today, not only in India, but all around the world where Indians are residing, they are today performing this ceremony of Deepavali. On this day, Lakshmi enters all homes, therefore she is welcomed with lamps. On this day also, after defeating Ravan, Sri Ramchandra Bhagavan returned back to Ayodhya and was welcomed with many lamps. Also, after the completion of the Ashwamedha Yagyas of the Pandavas, the Dwarkavasi is welcomed Krishna back to Dwarka with this same Deepavali festival. But really, I think, Tamo Ma Jyotirgamam, the real Deepavali means, the Vedas say, don't go towards Tama, ignorance, which is attachment to this material world, and attachment to wife, children, woman, etc. Don't go towards ignorance. Jyotirgamam, come towards the light. Do not waste this human form of life in material enjoyment. Therefore, Bhagavan can be seen by the light of bhakti. Therefore, Deepavali represents, we are praying for the power to see Bhagavan, his devotees, and even our own selves.
माधुर्य कादम्बिनी, तृतीय द्वितीयामृत वृष्टि। आज सवेरे बतलाया था भक्ति लता का अंकुर होने पर उसमें दो पत्ते लगते हैं और दो पत्तों में एक क्लेशग्नि और एक शुभदा, सब प्रकार के क्लेश दूर हो जाते हैं। प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट और अविद्या सभी, प्रारब्ध कर्म का खंडन नहीं होता, बहुत कठिन है। ज्ञानियों को मुक्ति तक स्थिति में भी उनको प्रारब्ध कर्म का भोग करना पड़ता। अपई तुनाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म भी दूर हो जाता है। ये भक्ति की इतनी शक्ति है। और शुभदा, सब प्रकार के शुभ गुण जो भक्ति के अनुकूल हैं वो साधक में उत्पन्न होते हैं। ग्रंथकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विषय को दृष्टांत के द्वारा सहज रूप में बोधगम्य कराने के लिए, बोधगम्य करवार जन्य तिनी वैधि भक्ति और रागानुगा का वर्णन किया। दोनों गुण क्लेशग्नि और शुभता का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। तात्पर्य यह कि साधन भक्ति के दो प्रवर्तक हैं, एक लोभ और दूसरा शास्त्रों का शासन वाक्य। भक्ति की स्निग्धता, सुंदरता, कोमलता, स्वप्रकाशता इत्यादि गुण को देखकर स्वतः ही साधक का मन लालायित होता है। तात्पर्य कि रागात्मिक सुबल श्रीदाम वात्सल्य के नंद बाबा जसोदा मैया और गोपियों का माधुर्य, इन भावों से जो सेवा करते हैं उनकी लीला कथाओं को सुन करके यदि हृदय में लोभ हो मुझे भी ऐसी सेवा प्राप्त हो जाए तो उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। इसके संबंध में कहा गया है सिद्धता पूर्वक भाग पर राग नामक राजा का अधिकार, जहां पर लोभ होगा जिस भक्ति में और वह चलेगी उस भाग पर राग नाम का अधिकार है। राग माने अनुराग, प्रेम से भी और आगे। इस रागानुगा भक्ति की हर अवस्था में राग नामक राजा का अधिकार रहता है। इसी प्रेम के कारण साधक भगवान से अपने संबंध जोड़ता है। सुबल सखा मधुमंगल जैसा सख्य भाव, माँ जसोदा नंद बाबा जैसा वात्सल्य भाव, कोई गोपियों जैसा मधुर भाव, कोई अपना प्रिय आत्मा पुत्र सखा गुरु सुहित इष्ट देव मानता है। इस प्रकार रागानुगा भक्ति के साधन में शुद्ध संबंध की स्निग्धता रहती है। इसको यो समझो, जब भक्ति लता के बीज से अंकुरित होकर के दो लगते हैं, पत्ते जब लगते हैं तो पत्ते जब कली के रूप में रहती है तो पहले वाला भाग दिखाई पड़ता है, वो जरा रुखड़ा होता है, कर्कश होता है, और जब ही वो पत्ता खुल जाता है तो भीतर में स्निग्ध दिखाई पड़ता है। तात्पर्य क्या, ऊपर वाला भाग वैधि भक्ति का और भीतर जब पत्ता खुल जाता है तो स्निग्ध, अतः तो रागानुगा भक्ति का ये उदाहरण है। अब शास्त्रों के शासन के भय से साधक की साधना में प्रवृत्ति होती है ये वैदिक चारों वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे तबे स्वस्य कर्म करिते रौ रवे पड़ी मजे। कोई अपना वर्णाश्रम का धर्म पूरा करता है किंतु कृष्ण का भजन नहीं करता और अपना सब दायित्व तो देश के प्रति समाज के प्रति माता पिता के प्रति सबके करता है किंतु कृष्ण का भजन नहीं करेगा तो रौ रौ नरक में उसको भोग करना पड़ता है। ऐसा सुन करके जो भक्ति करते हैं वो वैदिक भक्ति है। वैदिक भक्तों भक्ति के साधकों में भक्ति की प्रवृत्ति भगवान के प्रीति के लिए नहीं होती है बल्कि अपने दुखों की निवृत्ति के लिए होती है और वे भक्तों भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करते हैं इसलिए उसे रूखा और कठोर कहा जाता है। वो रूखा यहां भगवान से रागमूलक शुद्ध संबंध नहीं है। पत्ते के रूखे भाग की तरफ वैधि भक्ति भी नीचे की ओर रहती है। जब पत्ता खुल जाता है तो वो नीचे हो जाता है रुखड़ा भाग और ऊपर में स्निग्ध है। इसलिए अर्थात रागवन का भक्ति की अपेक्षा भक्ति की हीनता है अपकर्ष है। इसमें शास्त्र विधि की प्रधानता होती है रागानुगा भक्ति में नहीं। वो गलप कर सकता है दो चार को जो अनुकूल है उसको छोड़ देगा। 64 प्रकार की जो भक्ति है उसमें सभी नहीं करेगा रागानुगा वाला। वैदिक भक्ति को सब करना है किंतु रागानुगा वाला जो है वो गलप करके किसी को छोड़ करके वो बतलाएंगे कि कौन कौन से छोड़ सकते हैं और कौन कौन से ग्रहण कर सकते हैं। लता की पत्तियों में सभी भागों में समान गुण रहता है पाता के समान ही गुण चाहे ऊपर हो और नीचे वाला हो। चिकनी ओर का कुछ गुण और रूखी तरफ का कुछ गौण और हो नहीं दोनों ही क्लेशाग्नि और शुभदान दोनों। रूप गोस्वामी ने लिखा है जत्र रागान वाप्तात्वात् प्रवृत्ति उपजायते शास्त्र शासने नैव शास्त्रस्य सा वैधि भक्ति इति उच्यते। भजन के विषय में कहीं लोभ और कहीं शास्त्र शासन प्रवर्तक हुआ करता है जिसमें भक्ति का लोभ प्रवर्तक न होकर के शास्त्र शासन है वहाँ वैधि भक्ति करते हैं। श्री जी गोस्वामी ने टीका में लिखा है रागो अत्र अनुराग तत्र रुचि भी। यहाँ राग शब्द का तात्पर्य रुचि या अनुराग से है। यह राग जिस भक्ति का प्रवर्तक नहीं है वो वैधि भक्ति है। चक्रवर्ती ठाकुर ने भी ऐसा ही लिखा है कि मूर्ति के दर्शन से या भागवत के दशम स्कंध में वर्णित कृष्ण की मधुर लीलाओं के श्रवण से भजन में लोभ को यहाँ पर राग कहा गया है। ऐसा रागा भक्ति का ऐसा रागा राग भक्ति का प्रवर्तक न होकर शास्त्र शासन जिसका प्रवर्तक है उसे वैदिक भक्ति कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे कहते हैं तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो भगवान हरि हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता भयम। यदि जीव देह और दैहिक विषयों में आसक्ति के कारण भयानक मृत्यु का ग्रास हो रहा है और अत्यंत भयानक नरक यंत्रणा का भोग करता है तो इसे मुक्ति लाभ करने के लिए परमानंद लाभ करने के लिए अखिलात्मा सर्वेश्वर भगवान श्री हरि के नामों का कीर्तन करना चाहिए उनकी लीला कथाओं का श्रवण करना चाहिए। Krishna due to love and affection for Krishna.
Rama, being afraid of the ocean of repeated birth and death and the troubles caused by Maya, he performs bhajan. Therefore, in Bhakti Bhakti, there is no thick relationship like in Raghunatha Bhakti. Therefore, it represents the lower side of the leaf, because in that sense it is inferior or subordinate. Therefore, Bhakti Bhakti is subordinate to Raghunatha Bhakti. Raghunatha Bhakti has some special qualities that it gallops, it jumps on the head of everything. Srila Prabhupada has 64 limbs of bhakti, but if Raghunatha Bhakti, being of a superior nature, if some angas of devotion are left out, there is no fault. But Bhakti Bhakti, you have to follow all 64 limbs. Therefore, which limbs can be left out, we will discuss later. Both sides of the leaf are important, and in one sense, both sides of the leaf are of equal value. And both types of bhakti, Vaidhi bhakti and Raghunatha, both give the true results of Kleshakti and Subhada. Kleshakti means destruction of obstacles, Subhada means the attainment of all auspiciousness. Therefore, in simple language, Raga means ruchi, taste, attraction towards Krishna. And the absence of that attraction or rag, in the absence of that rag, that bhakti will be called Vaidhi bhakti. That greed may arise by having darshan of the deity or by hearing the Srimad Bhagavatam. Therefore, Srimad Goswami has said, Tasmat Bharata Sarvatma. Or Bharat, the Jivatma, because of attachment to material things, he becomes afraid of descending to the hellish planets. Therefore, for that reason, he takes the name of Bhagavan and hears Hari Katha.
প্রথমে ক্লেশাগ্নি পাতা, ক্লেশটা কি? অবিদ্যা। অবিদ্যা মানে নিজের আত্মতত্ত্বকে ভুলে যাওয়া, কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়া, অনিত্য বস্তুকে নিত্য সমঝনা, স্ত্রী পুত্র পরিবার ঘর ইত্যাদিকে নিত্য সমঝনা, অপবিত্র কো পবিত্র সমঝনা, দুঃখ কো সুখ সমঝনা, দেহ গেহ স্ত্রী পুত্র পিসা বৈভব নশ্বর বস্তু কো নিত্য সমঝনা, হাড় মাংস রক্ত অস্থি মলমূত্র আদি সে পরিপূর্ণ ইস অপবিত্র শরীর কো পরম পবিত্র অর ম্যায় সমঝনা, ইন ক্ষুদ্র বিষয় সুখো কে পরিণাম কে পরিণাম স্বরূপ জন্ম মরণ আদি নরক দুঃখ ভোগ হতে এই সব গুলিকে বলে অবিদ্যার কাল। অস্মিতা, দৃক শক্তি দর্শন শক্তি কি একাত্মতা কা জ্ঞান অস্মিতা, অর্থাৎ ম্যান আর মেরা, আমি আর আমার শরীরকে, আমি শরীর সম্বন্ধী বস্তু গুলিকে আমার এই যে মোহ এইটা বলে অস্মিতা। রাগ, রাগ মানে বিষয় প্রতি যে অনুরাগ আছে তাহাকে বলে রাগ। সুখ প্রাপ্তি দুঃখ নিবৃত্তিকে উপায় কি কামনা কো রাগ কহতে, অথবা অভিলষিত বস্তু কো পাকর পুনঃ অধিক পানে কি কামনা কো রাগ। বিষয় মে আসক্তি আর উসি কে লিয়ে প্রয়াস, দ্বেষ সুখ আর দুঃখ কে কারণ কে প্রতি বিরক্তি কা নাম দ্বেষ। সুখ ইয়া দুঃখ জিসকে কারণ জিসকে প্রতি বিরক্তি কা নাম দ্বেষ হয়। অভিনিবেশ, অনুকূল বিষয় প্রাপ্ত করনে কে আধার স্বরূপ শরীর মে আসক্ত আর মৃত্যু কে ভয় সে ভয়ভীত হোনে কা নাম অভিনিবেশ হয়। পুনঃ প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ রূঢ় আর বীজ, এই চার প্রকারে আরো পাপ। প্রারব্ধ পাপ, পূর্ব জন্মেতে আমি যা পাপ ইত্যাদি অথবা পুণ্য করেছি যাহা ফল ভোগ করবার জন্য এই শরীর, এইটি হচ্ছে প্রারব্ধ পাপ। অর্থাৎ তার মধ্যে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়েছে, তাকে ভোগ করতে হবে। আর যেগুলি আপনি হয় নাই, কোটি কোটি জন্মের জমা সঞ্চিত পাপ, ওটাকে বলে অপ্রারব্ধ পাপ। আর রূঢ় অথবা কূপ সূক্ষ্ম পাপ, যে পাপ কা বীজ রূপ ধারণ করকে আনে বালে সময় মে ফুটেঙ্গে। অপ্রারব্ধ কর্ম কি সমষ্টি কে রূপ মে ইয়ে অবস্থিত রহতে হ্যায়। আর বীজ পাপ বাসনাময় পাপ, বাসনা কে রূপ মে রহতে হ্যায়, অপ্রারব্ধ কি পৃষ্ঠভূমি হ্যায়। ইয়ে সবই ক্লেশ হ্যায়, ইয়ে সবই ক্লেশ ভক্তি কে দ্বারা দূর হো জাতে। ইয়ে ক্লেশ অগ্নি হ্যায়। অপরাধ ফলম পাপম কূটম বীজ ফলোন্মুখম ক্রমেণ এব প্রবিলীয়তে প্রলীয়েত বিষ্ণু ভক্তি রতা। যাহাদের আত্মা আর তাহাদের শরীর মন প্রাণ আদি সবই কৃষ্ণ ভক্তিতে নিবিষ্ট, তাহাদের প্রারব্ধ অপরারব্ধ কূট পাপ বীজ ফলোন্মুখ সব কিছু ভক্তি দ্বারা। মায়াবাদীরা মুক্তির একদম চরম সীমাতে পৌঁছেছে, এমন অবস্থাতেও তাহাদের প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করতে হবে, কিন্তু বৈষ্ণব নামাভাস হলেও বাস আর প্রারব্ধ কর্ম তাহাদেরকে ভোগ করতে হবে।
Therefore, Kleshagni, in Kleshagni, avidya, or ignorance, is completely destroyed. What is avidya? Avidya means forgetfulness of the true self and forgetfulness of Bhagavan. Accepting what is temporary to be eternal, accepting which is suffering to think, to accepting that which is temporary to accept as being eternal, that which is suffering to accept as being full of happiness, that which is pure to accept, that which is impure to accept as pure, this is all called avidya, ignorance. It pertains to the body. Therefore, this avidya has six components. Avidya, ignorance, asmita, illusion, thinking constantly I am mine, forgetfulness. Thinking I am this body and what pertains to this body belongs to me is for my enjoyment. Rag. Rag means attachment towards the objects of the senses. Dvesh. Upon not attaining that happiness one feels detachment, disgust, envy. Abhinivesh. Absorption in falsity and fear of death. These six components of avidya. Also we should see the four sub-compartments, Parabdha, Aparabdha, Kut and Bij. Parabdha, that karma which I am experiencing now in this present body. Aparabdha karma, what I will experience in the future due to my past activities. Bij means the seed of pious or sinful desires which have not sprouted, which are still in an unmanifest state, that also refers to aparabdha karma. And finally, where that seed sprouts in the form of vasana, desire, which is now manifest in this body, therefore it refers to parabdha karma. These four are also destroyed at this stage. By engaging the body, mind, senses, intelligence, and all the objects in our possession in bhakti, then the attachment to all these things are completely destroyed. Avidya is uprooted. Therefore, even the mayavadis, which strive very hard for mukti, and they consider that to be the topmost achievement, even those mayavadis, those liberated souls, have to taste parabdha karma, this body. But the devotees, even upon achieving navabhas even, they do not have to taste that parabdha karma.
যদ্যপি বিষয়টা আমি রুচিকর হচ্ছে না, নিরস মনে হয়, তথাপিও সাধারণ ভাবতে জানা উচিত যত রকমের পাপ টাপ আছে ভক্তি প্রারম্ভেইতেই সব দূর হয়ে যায়, এইটি মূল জিনিস। Though this basis is not tasteful, but we should know in brief that in the beginning of bhakti, all kinds of paap, sin, everything goes away. Even prarabdha karma. Rup Goswami has told that he Bhakta has never to taste it. So bhakti is how glorious you should know. এখন আমরা প্রথমে এখানে দেবী প্রতীক না মানসী গঙ্গা হয়ে এসে you will have to go with Pandaji মানসী গঙ্গা and give প্রদীপ there. And then return back and here in front of Thakurji in each